अलम तर इलल लजीन बदलु नेमतुल्लाहि कुफ्रा, तुमने देखा इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई, कौन सी, इस्लाम की, और इसे कुफ्राने नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाय करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए ताकि वो इन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें, इनसे कहो अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर दोजखी में जाना है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। आगे मोमिन सरसब्जो शादाब दरख्त कैसे बनता है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स। ए नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं इनसे कह दो नमाज कायम करें। अगर आप दीन का दरख्त बनना चाहते हैं तो नमाज नहीं निकल सकती आपकी जिंदगी से, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें। खर्च भी करना है, कभी खुला कभी छुपा, या फिर मुहासबा करते हैं, खुले हम तो खर्च करती हूँ, कभी छुपा के भी करती हूँ, कभी कोई दिरहम दिनार छुपा के भी डाल दिया कि अल्लाह इसका ना किसी को पता चले। यही वो इखलास की नेकी है जो क़यामत के दिन हो सकता है तुझे पेश करूँ और तू मुझे जहन्नुम से आज़ाद कर दे, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। 3 सेकंड, कोई अच्छी सी नीयत हम सब अपने लिए करें कि अल्लाह उस दिन के लिए आज ही तैयारी करने वाला बना दे। अब आगे तौहीद की कुछ खूबसूरत मिसालें। अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए से तुम्हें रिस्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख़र किया कि समंदर में इसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख़र किया, जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख़र किया। हर जगह लफ्ज़ तुम्हारे लिए को सोचिए, लकुम लकुम, कितना प्यार आता है जब शौहर कहते हैं ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये चीज़ आपकी है। हमें तो हमेशा ये लफ्ज़ बड़ा अपील करते हैं, ओनली फॉर यू, 10 लिफाफे खरीदते हैं ओनली फॉर यू के, 9 लोगों से झूठ बोल रहे होते हैं, एक को तो सच से दे दिया। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए, सारा जहाँ तेरे लिए, तू मेरे लिए, अल्लाह हमें अपना बना ले। क्यों किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया के लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। जरा रुकिए, क्या क्या आज तक मांगा, जरा से अपनी पिछले 20 25 30 साल की जिंदगी को देखें, क्या क्या मांगा है, क्या क्या मिला है। यहां अपने लिए एक एक्टिविटी लिखे, छोटी छोटी तो याद नहीं रहेंगी, बड़ी बड़ी दुआएं जो कबूल हुई उनकी लिस्ट बनाएं, हैरान रह जाएंगे। अगर पीछे से शुरू करें ना बचपन में कि कैंडी देकर दिल किया कि ये मिल जाए तो मिल गई, वो भी लिख लें, और आज तक क्या क्या मिला है। हर दिन हमें सैकड़ों चीज़ें हमारी मांगी भी और बिन मांगी भी देता है, और मैं तो अक्सर कहती हूँ अल्लाह ने तो वो भी दिया जो मांगा और वो भी दिया जो सोचा भी ना। हमारी नीड्स पूरी होती हैं तो वॉन्ट्स पे आ जाते हैं, ज़रूरियात पूरी करता है तो उसके बाद ख्वाहिशात भी पूरी करने लगता है। ये जो आइसक्रीम खाते हैं ये कोई ज़रूरत थोड़ी होती है, ये जो चॉकलेट खाते हैं ये कोई ज़रूरत थोड़ी होती है, तो रोटी के बाद आपको चॉकलेट भी खिला देता है। जो तुमने मांगा उसने दिया तो क्या करो फिर, वो जो कहता है वो तुम भी करो। हम कहते हैं तू सब दे, हम नहीं देंगे, और कुछ लोगों का तो अल्लाह रहम कर एटीट्यूड क्या होता है, जैसे होटल में गए ऑर्डर प्ले करते हैं ना, जैसे ऑर्डर पास किया ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी, साथ ठंडा भी ले आना, बिल देने से पहले भाग जाएंगे। दुनिया में आप कुछ मांगे कभी बिन पैसों के लिए, काउंटर से उठा के ले जाएं चीज़ें, एक छोटी लिपस्टिक ले जाएं, जरा आप दरवाजे पे रोक लिए जाएंगे कि आपने कुछ बगैर पे किए यहाँ उठा लिया। अल्लाह की इस नेमत को जो उसने मुझे दी, जितनी नेमतें दी, हमने क्या पे किया, हमें तो बिन मांगी नेमतें मिले हम नहीं लेते, हमें तो मुफ्त की नेमतें मिले हम नहीं देते। और मैंने देखा $500-500 टिकट देकर लोग एक एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, 2,000-2,000 क्रोन की टिकट मैंने सुना है लोग देकर फ्रंट रोज में बैठते हैं आके, क्या के 2-4 घंटे एंटरटेन्ड होंगे। इस किताब की दौलत को फ्री में भी कोई दे दे कितने लेते हैं, आप कहेंगे बहुत ले रहे हैं, पर बाहर बहुत लोग हैं। किस किस कान पे ये दौरे कुरान का फ्लायर गया, आप अपने गुमान से कह सकते हैं, सैकड़ों तो नहीं मैं मानूंगी, हजारों पे गई। जायका वाले के पास जिस दिन हम एक दिन मीटिंग में आए थे तो उसने उस दिन अपने फेसबुक से बताया था कि इतने 100 लोग तो आपका ये फ्लायर पढ़ चुके हैं, इतनी कॉल आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है हजारों लाखों पे ये पैगाम गया, चंद 100 को अल्लाह ले आया। बाकी किधर है? हम मुतमईन है, खुश है, शुक्र है, और ना ही आए तो अच्छा जगह कम हो जाएगी, अब तरी फैल जाएगी। जरा सा सोचिए कि अल्लाह वो भी देता है जो मांगते हैं, जो नहीं मांगते। और मैं कहती हूँ जिनके कानों तक नहीं पहुंची उनको तो छोड़ दें, और जिन्होंने सिर्फ इसको एक फ्लायर देखा उनको क्या पता ये क्या दौलत है, चखी तो नहीं। मुझे तो हैरत उन लोगों पे होती है जो चख के छोड़ देते हैं, निगल के उगल देते हैं, थूक देते हैं। मुझे कभी आज तक जिंदगी में ये फलसफा समझ ही नहीं आया, जिसने एक बार कुरान की इस दौलत और इस लज्जत को पा लिया जो इस वक्त मुझे आपको मिल रही है, वो कभी इसको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। सारी जिंदगी आम खाए हो, शुगर हो गई है, डॉक्टर कहता है अब नहीं खानी, नहीं छूटते, छुपा के खा लें, दबा के खा लें, बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लें, खाते हैं। कैसे हो सकता है इस प्यारी दौलत को कोई पाए और के बस इट्स ओके, एनफ इज एन, अब नहीं मुमकिन। दुआ करें अल्लाह में ऐसी कोई बीमारी ना लगाए कि जिससे कुरान का रिएक्शन हो जाए। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। यहाँ एक जुमला मैं हमेशा चेंज करवाती हूँ, आप लोग भी करिए। तर्जमे में क्या लिखा है? नेमतों, इसको काटिए। अरबी का लफ्ज देखिए, वाइन तौदू नेमत अल्लाह, नेमत वाहिद है। अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। और वो एक नेमत कौन सी है? सारी नेमतें नहीं है, सिर्फ एक नेमत भी तुम अल्लाह की गिनना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। हकीकत ये कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। कौन सी नेमत है? हर नेमत अपनी जगह एक है। हदीस में आता है कयामत के दिन इंसान की नेकियों का पलड़ा होगा, सारी जिंदगी की इबादत, मामलात, अखलाकियात, सदका, ज़कात, और सिर्फ एक नेमत आएगी और अल्लाह उसको नेकियों के पलड़े में डालेगा, और वो नेमत का पलड़ा झुक जाएगा, नेकियां हल्कियों के ऊपर हो जाएंगी। एक नेमत का भी हक सारी जिंदगी की इबादत से नहीं दे सकते। और अगर इसको तौहीद की नेमत ले लें तो ये सबसे बड़ी नेमत, इस्लाम की नेमत, कुरान की नेमत। अल्लाह ताला हमें नेमतों का कदरदान बना दे और बेहतरीन तरीके से ले आए। आप देखिए पीछे बड़े बड़े समंदरों की बात हुई, जमीन आसमान के मुसख़र किए जाने की बात हुई। आप और मैं अगर इसको सामने रखें कि इतनी बड़ी मखलूकात एक छोटे से इंसान की खिदमत में लगा दी तो हक कितना है? हकीकत है कि हम तो एक सांस का भी हक अदा नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि अगर मैं हर सांस के साथ शुक्र करूं तो मुझे दो दफा करना पड़ेगा, सांस के अंदर जाने का और सांस के बाहर आने का। जब से यहां बैठे हैं दिल कितनी दफा धड़का, क्या आपने मैंने इतनी दफा शुक्रिया अदा किया अल्लाह का? तो दुआ कीजिए कि शुक्रगुजार हो जाए। अब अगले हिस्से में अल्लाह ताला वो प्यारी हस्ती जिसने वाकई शुक्र का हक अदा कर दिया, जिसने जिंदगी की कदर कर दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और यहाँ आपको इब्राहिम की मोहब्बतों में डूबी हुई दुआएं मिलेंगी, अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए क्या क्या गम लाहक थे उनको, आइए देखते हैं। वइस काल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, याद करो वो वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। आप नहीं दुआ करेंगे? ये दुआ इस वक्त हमारे दिल की हर धड़कन से निकलने की जरूरत है, जिस तेजी से कुफर और इल्हाद दुनिया में आम हो रहा है। परवरदिगार इन बुतों ने तो बहुतों को गुमराही में डाला है, मुमकिन है मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें, लिहाजा इनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है और जो मेरे खिलाफ तरीके अख्तियार करे तो यकीनन तो दरगुजर करने वाला मेहरबान है। इब्राहिम की हमदर्दियां सिर्फ उस औलाद के साथ हैं जो अल्लाह के हुक्मों पे चलती है। आपको मुझे भी इतना वोकल होना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे ठीक होंगे। और अगर हम उनके लाड ही देखते रहें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, बड़े होंगे ठीक हो जाएंगे, बस जरा ये सुई टीन गुजर जाए तो ठीक हो जाएंगे, नहीं अब 20 के हो गए, नहीं मुझे पता है 25 के बाद ये बहुत अच्छे हो जाएंगे और 30 के बाद तो मिच्योर होंगे और शादी के बाद होंगे, तो याद रखिए हमारे इन लाडों ने भी औलाद को ढीला कर दिया। एक दफा रूठ के तो दिखाइए बच्चे से, बगैर बोले, बगैर बदतमीजी किए, बगैर उसकी इंसल्ट किए, क्यों? तूने नमाज नहीं पढ़ी, आज मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। खाना दे दें, और माँ तो है नहीं कोई जो देगी, आप दे दीजिए, रख दीजिए, चेहरे से खामोशी से बताएं बात गलत है। क्या आपके शौहर को नहीं पता चलता कि आप आज उनसे खुश हैं कि नाराज हैं? तो कैसे हो सकता है कि माँ के पेट से निकले हुए बच्चे को ना पता चले कि आप खुश हैं कि नहीं? ये हम लाड देखते हैं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, कोई नहीं, देखा जाएगा कब, जब आगे वक्त आएगा। अल्लाह मोहलतें दे, अल्लाह इनको तौबा की तौफीक दे, अल्लाह इनको इस्लाह की तौफीक दे, लेकिन अगर कोई अचानक मामला हो गया तो क्या करेंगे? सुन के दिल बंद नहीं होता। चार बच्चों में एक बच्चा आग में चला गया तो क्या होगा? छह बेटियां हो, पांच घर में खुश हो, एक का घर उजड़ा हो, मां बाप की सारे आंसू उसके साथ चले जाते हैं। कभी सोचिए कि हमारा एक बच्चा भी अगर हिदायत से दूर हुआ तो क्या हुआ? हम कहते हैं एक को हाफिज बना रही हूं, क्या सिर्फ एक की आखिरत चाहिए, बाकियों की फिक्र नहीं? तो ये दुआएं भी करें और साथ ही साथ असबाब भी इख्तियार करें। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो की आबादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुख्तरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना, यानी लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, न जमीन में न आसमानों में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। मैं कहती हूँ इतनी ऊंची आमीन होनी चाहिए कि दरो दीवार हिल जाए, कि अल्लाह हमारी नस्लों को दीन के लिए चुन ले। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर। परवरदिगार मुझे और मेरे वालदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ कर दीजिए जबकि हिसाब कायम हो। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का दर्द महसूस कीजिए। और हकीकत यह है कि आज हमारे मर्दों को मस्जिदों की तरफ और औरतों को मदरसों की तरफ माइल होने की जरूरत है। जब शौहर और बीवी ऐसी जगहों की तरफ माइल होंगे, ये कभी हो नहीं सकता कि बच्चे माइल ना हो। एक बड़ा खूबसूरत किसी ने आर्टिकल भेजा था, खुलासा उसका यही था कि तुर्की ने अपनी नस्लों को बचा लिया। कुछ उसमें बात ये थी कि मस्जिद का मंजर है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नमाज के दौरान आगे से गुजर रहे हैं, पीछे से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप खुद भी आजमाएंगे कि बच्चे कहीं भी खेल रहे हो, आप जो ही नमाज शुरू करेंगे ना, आपके सामने यूं टिक 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 शैतान लेकर आता है कि इनकी नमाज खराब की जाए। तो उसमें उन्होंने ये लिखा होता कि बच्चों के इस शोरों हंगामे और सारी चीजों के बावजूद मस्जिद वालों ने ना तो उनको डांटा, ना उनके पेरेंट्स को मजबूर किया कि तुम खबरदार कल से इनको लाए, तुमने नमाजियों का खुशू खुदू मतलब खराब कर दिया। मैसेज उसमें क्या था कि जो कौम अपने बच्चों को मस्जिदों से मानूस कर देती है उनकी नस्लें महफूज हो जाती है। और इसके बारक्स अगर हम के खबरदार बच्चों वाले ना आए, खबरदार बच्चों की जरूरत नहीं, बच्चों को लेकर ना लेके जाइए। मैं नहीं कहती कि वो जानवरों की तरह भागे, अदब सिखाएं, लेकिन अगर ना समझी में बच्चा कुछ गलत काम करे तो कभी भी उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे फिर दूर हो जाएंगे। देखिए कल माएं मस्जिदों में जाती थी, बच्चे भी गोदों में जाते थे। नबी सल्लम के दौर की खवातीन की मिसाल है। साहबियात कहती हैं हम अपने छोटे गोद के बच्चों को रोजा रखाते थे, हम छोटे छोटे जैसे दो दो चार चार साल के बच्चे रोजा रखाते और जब वो रोते तो हम उनको खेलने के लिए गुड़िया देते, हम उनको मस्जिदों में ले जाते थे। तो वही बात है, तालीम उल उम्मी, माँ की तालीम एक उम्मत की तालीम है, तो लिहाजा मस्जिदों को आबाद करना है। इसी तरह याद रखिए कि यहाँ आपको मुझे ये दुआ करनी है, यहाँ दिल की गहराई से आप सब आंखें बंद कर लें या खोल लें, अपने एक एक बच्चे की तस्वीर जहन में लाएं और दिल से दुआ करें, अल्लाह हमारे बच्चों को नेकियों के मौके की तरफ माइल कर दे, अल्लाह हमारे बच्चे ढूंढ के नेकियों को पालें। और ये मौके घर से शुरू होते हैं। मैं खुद अपने घर में देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब जाते हैं ना मेरी सास को मिलते हैं तो थोड़ी देर होगी ना पानी का ग्लास, मामा पानी दो, हाँ बेटा दे दो, चार चार ग्लास उनके पास पड़े रह जाते हैं। मामा मना नहीं करती, क्यों? कहती है मैं अपने बेटे को नेकी से क्यों रोकूं, बाद में सारा दिन उन ग्लासों में पानी पीती रहेंगी, इससे दवाई खा ली, इससे ये खा लिया, क्यों कि मैं बच्चे से क्यों रोकूं। कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ ये भी आजिज़ी सिखाई है कि मामा को पानी दिया करो, बाबा आए हैं बेटा जाओ जूता रख दो, भाई आया जरा जाओ उसको कपड़े इस्त्री कर दो। आज हम तो गाफिल हो गए, पता नहीं हमें हो क्या गया। मुझे तो लग समझ ही नहीं आती हमारी जिंदगी का फोकल पॉइंट गया किधर है। हर बंदा अपने हाथ में एक बुत पकड़ के खड़ा है, कभी खुद देखता है कभी दूसरों को देखता है, और सेल्फी से सेल्फिश ही हो गए और अपने आप को पूछते रहे। ना वो रिवायतें रही, ना वो हकायतें रही, ना बेटियों की वो तरबियत रही, ना बेटों का, ना माँ बेटे का वो तसव्वुर। दो लोग घर में बैठे होते हैं ऐसे लगता है इंटरनेट कैफे खुला हुआ है, साथ बैठे हुए दोनों अपनी अपनी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं कहती हूँ कभी इसको भी तो बंद करके जरा सोचें कि आज मेरी जिंदगी का फोकल पॉइंट यही तो नहीं बन गया। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है इस दिन के लिए जब ये हाल होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा सा सोचिए, सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी होंगी और दिल उड़े जा रहे होंगे। कितना खौफनाक दिन होगा। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। आपको मुझे इस चीज को सोचना है। आप देखिए कि जब तक दुनिया में रहकर हमें आखिरत के इस दिन का ख्याल नहीं आएगा, तब तक हमारा दिल नहीं लगेगा, और हमें इस दुनिया में रहकर उस आखिरत को याद करना है। आप सोचिए, क्या छोटा बच्चा मॉन्टेसरी में जाता है, क्या वहां का माहौल है? हर दुनिया की दौलत वो जमा करके दिखाते हैं बच्चों का, खुद ही दिल करता है भागे भागे जाते हैं आपके बाहर नए आंगनों में, जाओ भागो दौड़ो। इसके बरक्स मदरसे में एक सख्त किस्म का उस्ताद बैठा हुआ है, टूटी हुई कुर्सियां हैं, फटे हुए कालीन है। इस वक्त अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी नस्लें दीन की तरफ मायल हो, तो आप ग्रेड कीजिए। मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल नहीं शर्माती, और आप सब पे तो मुझे कोई भी गुमान नहीं है क्योंकि मैं आपको जानती नहीं। जिस माहौल में इस वक्त मैं और आप ये दौरा कुरान कर रहे हैं, अगर ये माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, कुर्सियां ना होती, आपको नीचे बैठना पड़ता, कितने लोग हैं आजकल सेहत के प्रॉब्लम्स और आदत ना होने की वजह से नीचे नहीं बैठ सकते, ये एसी ना होता इस वक्त, और जो पिछले दिनों में गर्मी गुजरी है आप सब जानते हैं, और अगर इस वक्त जिस माहौल की खामोशी, सुकून, सफाई या चीजें बिखरी होती, वहां जायनमाजों का ढेर लगा होता, उधर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी होती, उधर मसल्ले पड़े होते, मुझे बताइए कि क्या आप इतना जज्ब करते जो इस वक्त कर रहे हैं? क्यों यहां लोगों का दिल लगता है? क्यों? वजह क्या है कि इधर माहौल बना होता है, वहां भी बनाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि अब जो हम जमीन पे बैठ के करें, अगर हम जहां ना करते किसी मस्जिद के अंदर करते तो बुरा होता, वो भी इससे ही अच्छा होता, लेकिन दीन को ऊंचा करने की जरूरत है। और आजकल जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे जहनों में कि अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो क्या करें और कहां करें? क्यों? कि दीन का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए आप, दीन सिर्फ फ्री खाता ही है, मुफ्त खाता है, टूटा फूटा बचा खुचा। कितने लोगों को दीन हजम ही नहीं होता जब उस पर पैसा लगता है। क्यों? दीन पे पैसा, मुफ्त में करें, ये करें, वो करें। तो याद रखिए, आज का दौर है, अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी के बड़े ऑडिटोरियम में बैठ के साइंस सीख रहा है ना, तो कुरान भी उतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, फिर उनको लगेगा ये भी को करने की चीज है। एक तो वैसे ही शैतान ने धोखे डाल दिए, दूसरा हाल क्या है कि हम वैसे भी दीन को बड़ा मस्कीन और मजलूम और फकीर दीन, गरीब दीन, कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ ना लाओ बस आओ, अब कितना कुके कर सकता है। आप देखिए ना कि अगर एक बंदा दीन को सिर्फ अपनी जान पे ले ले, मुझे किसी से मदद नहीं लेनी, मुझे किसी से कुछ नहीं करना, कितना को दिन करेगा? अखीर स्टैंडर्ड डाउन होगा। मतलब मैं ऐसे कई स्कूलों को जानती हूँ, फ्री टीचर रखे होते हैं बेचारों ने, क्या करें फिर? वो पेरेंट्स फीस नहीं देते, इधर का तो बिल्कुल ही नहीं पता, और मुझे अभी भी नहीं पता, अभी बताएं बाद में कि यहाँ कोई मुस्लिम स्कूल बच्चों का है कि नहीं, लेकिन मुझे अभी भी मिसालें अमेरिका की याद आती हैं। आम स्कूलों में फ्री है स्कूल, तो जो मुस्लिम स्कूल है वहां $200-$300 महीने की फीस देनी पड़ती है, क्योंकि इस्लामिक है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती। अब बताइए कि जहां वो फीस रखते हैं, पेरेंट्स कहते हैं फीस क्यों रखते हैं, पैसे नहीं दे, अब वो क्या करें? फ्री टीचर ढूंढें, उनको तो फ्री टीचर मिलते हैं, इनको तो नहीं मिलते, बात समझ रहे हैं? तो याद रखिए, यहां अपने लिए एक मुहासबे का नुक्ता लिख लें, दीन का क्या स्टैंडर्ड चाहती हूं। ये मत सोचिए कि पैसा नहीं होता मुसलमान के पास, पर दीन पे खर्च करना नहीं है कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम कपड़ों पे खर्च करते हैं, कल परसों कोई बात कर रहा था तो ऐसी बात हो रही थी कपड़ों के जोड़ों की, तो कहने लगी कि शादी का एक जोड़ा है वो 30,000 रुपए में बनता है, ऐसे स्टैंडर्ड। दुल्हन के जोड़े की बात नहीं हो रही, ये खैर से दुल्हन की बहन या अम्मा की बात कर लीजिए, वो भी किसी से कम नहीं आज के दौर में। अच्छा, तो मैंने उनसे चुपके से पूछा, मैंने कहा कितनी दफा पहनते हैं? तो एक ने सच बोला, दूसरी ने जरा सा कम बोला, तो उसने कहा 2-3 बार तो पहन ही लेते हैं। तो जो साथ ही कहती, हमारे खानदान में तो बस एक ही दफा पहनते हैं। मैंने कहा चले हम आपकी बात मानते हैं, 3 दफा पहनते हैं ना जोड़ा, हर दफा का जोड़ा 10,000 पे पड़ा ना, आज 10,000, दूसरी दफा पहने के 10,000, 10,000, कि आपके मेरे वजूद की इतनी कीमत है कि 10,000 का जोड़ा पहन के लोगों को दिखाएं कि हम बड़े कीमती हैं, जब मेरी जो कीमत नहीं तो मैं ऊपर लगाऊंगी ना कि मेरी तो कीमत बने। कितना आसान है 30,000 का जोड़ा, और बात किस पे हो रही थी, दर्जी कहता है बाजी 30,000 रुपये का जोड़ा बना लेती हूँ, मुझे 3,000 सिलाई नहीं देती, तो इसका तो वो 33 का हो गया, और उस पर जूती ज्वेलरी मेकअप सब कुछ लगा लीजिए तो 40 से ऊपर पड़ेगा, बड़ा आराम से 40,000 का जोड़ा, और दुल्हन माशाल्लाह उसकी तो बात ही कोई ना करे, और लगती क्या है, वही है जो है। आप यकीन करें, आप, मैं किसी का मजाक नहीं करना चाहती ना आप हंसे, लेकिन आज इतने जोड़ तोड़ के बाद भी वो हुस्न नहीं आता जो पहले एक सुर्खी टोटी इधर लगा के औरतें बन जाती थी, कैसी धुलने लगती थी। 15-15 दिन पहले उनको घरों में छुपा देते थे, धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, और जैसे वो निखरती थी क्या कहते थे, रूप आया। आज क्या कहते हैं, मेकअप अच्छा हुआ, किधर से किया, उसने किया, कोई कहता बढ़ावा बना दिया, कोई कहता ज्यादा कर दिया। यानी आप देखिए कि स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं मैं, हम कभी टूटे फूटे माहौल में शादियां तो ना करें। क्यों? क्योंकि हम हमने उधर लोगों को माइल करना होता है। लोग कहते हैं अब घर में शादी करें, लोग आते ही नहीं है, कुर्सी ना मिले, ये ना मिले, वो ना मिले, लोग बैठते ही नहीं है। तो याद रखिए कि ये सब कुछ करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सौतेले बच्चे वाला सलूक दीन से ना करिए, अपना बच्चा है ना उसको समझें, आप उसके ऊपर खुशी से लगाएंगे। दीन के ऊपर बाज दफा इंसान खर्च करता है, पर कैसा, वही जैसे सौतेले बच्चे को सबके सामने लाड प्यार करती है माँ, ताकि लोग, कितनी अच्छी माँ है, कितनी अच्छी औरत से शादी की बाप ने, बच्चों को माँ बन के पाल रही है, और अकेले में हो सकता है कि उनको पूछे भी ना। तो अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी नस्लों, क्या हमारे मर्दों, हमारे, हम सब के दिल दीन से जुड़ जाए। और याद रखिए अच्छी चीज में हमेशा कशिश होती है। अगर ये सारा माहौल आपको इस जगह जज्ब करने में मदद दे रहा है, मैं कहती हूँ ये दीन है, ये अच्छा माहौल, ये साफ सुथरे कपड़े, अगर यही अट्रैक्शन है तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो आपकी वर्थ हो गई। आपकी अच्छी गाड़ियां, आपके तो नहीं गाड़ी पे आना बड़ा खराब करना, ये मुनाफिक लोग हैं गाड़ियों में बैठ के आते हैं, हम पैदल जाएंगे, हम टूटी हुई गाड़ी में जाएंगे। इस सोच से अब निकलने की जरूरत है। अगर आपने, मैंने दुनिया के नक्शे पे दीन को लेकर आना है, और अल्लाह ताला हमें इसका जरिया बना ले। और यहाँ एक बड़ी बात प्यारी रह गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं कब मांगी, जब बीवी और बच्चे को गैर अजीज ज़ारा इनमें छोड़ रहे थे। प्रैक्टिकल स्टेप पहले उठाया, वाकया तो पता ही है ना, बीबी हाजरा और इस्माइल को उसमें छोड़ा, और वापसी पे हो सकता है रोते हुए ये दुआएं मांगते हुए कि अल्लाह तेरा घर आबाद करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। अपने घरों की फिक्र किसको किसको है, और अल्लाह के घरों की कितनी। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा बुत घर है, पूछें कभी किसी के दिल से कितना सुकून होता है अपने घर में बैठ के मुतमईन होना। काम भी करते हैं, खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं, वो क्या कहते हैं, कखों की कुल्ली बड़ी, बड़े होटल में जाए, एक दिन रह ले, दो दिन रह ले, तीन दिन रह ले, चौथे दिन आपको घर की दाल याद आएगी। इब्राहिम ने बुढ़ापे में अकेली औलाद, बीवी, बुढ़ापे का सहारा, कहा अल्लाह जी आप, आपका घर आबाद हो जाए। और आज जो काबा की रौनक है, ये इब्राहिम की इस कुर्बानी का नतीजा है। जब हम अपने घरों से चिमट गए, जब हम वो अखलद इलल अर्द हो गए, तो फिर आप देखिए कि तब से उम्मत का जवाल शुरू हुआ। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अब कुछ और चीजें आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, वंजरिन नास यौम यातीहिम अलअज़ाब, आयत 44, ए नबी इस दिन से तुम इन्हें डरा दो जबकि अजाब इनको आलेगा। इस वक्त ये जालिम लोग कहेंगे ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। अब क्या फायदा, वक्त चला गया, इसीलिए क्या होगा, मगर इन्हें साफ जवाब दिया जाएगा। क्या तुम वाकई वो लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा कर कर कहते थे हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं। दुनिया में यही लगता है, हमने कभी बूढ़े नहीं होना, हमारा माल कभी खत्म नहीं होना, हमारी औलाद कभी भी नहीं खत्म होगी। दुनिया में जब नेमतें होती हैं ऐसे ही लगता है, हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने इनसे क्या सलूक किया, और इनकी मिसालें दे देख कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल ली मगर इनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचे इनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ उनसे टल जाए। कितनी उम्मीद अफजा बात है, लोगों ने नबियों के खिलाफ इतनी चालें चली कि पहाड़ गिर जाएं, लेकिन अल्लाह ने उनकी चालें तोड़ दी, तो अल्लाह आज भी वही है। असल बात यह है कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, आज भी अगर वो ईमान हो ना जो बदरी साहबा का था, तो आज भी फरिश्ते हमारी नुसरत को उतर सकते हैं, लेकिन आज ईमान की कमी है, अल्लाह हमारे ईमान बढ़ा दे। अब सूरत का बिल्कुल एंड आपके मेरे सामने आ रहा है कि जिसमें कुछ और भी सोच दी जा रही है, और वो क्या, पस ए नबी तुम हरगिज गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। हम भी कहते हैं कि अल्लाह हमारा गुमान यही है कि तूने जो रसूलों के साथ वादे पूरे किए तू हमेशा वही वादे पूरे कर सकता है। अल्लाह ताला जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे, और सब के सब अल्लाह वाहिदे का हार के सामने बेनकाब हाजिर किए जाएंगे। उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे। किसी कैदी का तस्वुर लाइए जहन में, तारकोल के लिबास पहने होंगे, ये जो लुक होती है ना सड़कों पर डालते हैं उसको तारकोल कहते हैं, और आग के शोले इनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफिस को इसके किए का बदला दे। اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ ایسا ہو؟ اللہ نہ ہمارے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ ایسا کرے. تو کرو کیا پھر؟ انسانیت کو اس برے انجام سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ریسیپی کیا ہے؟ ہاذا بلاغ للناس. آخری آیت. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کیا انما ہو الہ واحد, کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. سچ بتائیے, یہ پیغام انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ ھذا بیان, ھذا بلاغ للناس. اس پیغام کو جب تک دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ہم بھی نہیں بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پیغام کو عام کرنے والا بنا لے. اگلی سورہ آیت کو اگلے پارے کے ساتھ کریں گے.